अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम गामदी के साथ में मैं नदा समीर आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। ईद किस तरह मनाई जाती है, किस तरह मनाई जाए, और चूंकि प्रोग्राम है गामदी के साथ, इसलिए हम सबके इंतहाई मोहतरम जनाब जावेद अहमद गामदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब, खैरियत से?
वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है।
रमजान और ईद उल फितर का आपस में क्या ताल्लुक है?
ये ईद है, कोई त्यौहार होना चाहिए, ये इंसान की फितरत है, यानी इंसान त्यौहार बनाता है। त्यौहारों का आप इससे अंदाज़ा कर सकती हैं, क्योंकि कौम पैदा बाद में होती है, अपना यौम पहले बनाना शुरू कर देती है। यहूदियों के यहाँ बहुत से त्यौहार मौजूद थे, उनका जिक्र आता है। आप इस वक्त भी अगर बाइबल को पढ़ें तो उसमें मालूम होगा कि मिसाल के तौर पर उन्हें फ़िरौन की गुलामी से निजात मिली, तो उन्होंने उसको एक त्यौहार मुकर्रर कर दिया। उनकी सल्तनत फ़लस्तीन में कायम हुई, उन्होंने उसको एक त्यौहार की सूरत दे दी। उन पर तौरात नाजिल हुई, उन्होंने उस दिन को एक त्यौहार की सूरत दी। उनके यहाँ भी बहुत से त्यौहार थे। आप हमारे यहाँ भी अगर देखें तो मौसमों से त्यौहार पैदा हो जाते हैं, कौमों की ज़िंदगी में त्यौहार पैदा हो जाते हैं। ये यौम पाकिस्तान, ये यौम कायदे आज़म, ये क्या चीज़ है? यानी हमारे कौमी वजूद का इजहार होता है इस तरीके से। तो ये इंसान की एक ज़रूरत है, बाहर की आमद के ऊपर। बसंत का त्यौहार असल में बाहर से पैदा हुआ, अगरचे लोग उस पर बहुत कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन हकीकत वही है। यानी उसमें बसंती रंग है, सरसों के फूल खिले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जितनी हैं ये इंसानी फितरत में है। मज़हब क्या है? मज़हब असल में इंसान की फितरत ही का इजहार है। यानी मेरी फितरत के अंदर जो चीज़ें खुदा से मुतल्लक हैं, जो मेरी अपनी शख्सियत के अखलाकी वजूद से मुतल्लक हैं, उनको मज़हब ऑर्गेनाइज करता है। तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो लोगों से आपने पूछा कि यहाँ क्या सूरत रहती है, तो लोगों ने बताया यहाँ बहुत से त्यौहार होते हैं जो लोग मनाते हैं। तो आपने फरमाया कि अच्छा, मैं अल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ, तो अल्लाह ने हमारे लिए दो त्यौहार मुकर्रर कर दिए। उन दोनों त्यौहारों को अगर आप देखें तो उनमें एक को रमज़ान के साथ मुतल्लक कर दिया और एक को सैयदना इस्माइल की कुर्बानी के साथ मुतल्लक कर दिया। एक को हम ईद उल फितर कहते हैं, एक को ईद उल अज़हा कहते हैं। रमज़ान का महीना एक गैर मामूली महीना है। इसमें होता क्या है? इसमें होता यह कि खुदा के साथ जो हमारा इताअत का ताल्लुक है, यानी वो हुक्म देगा हम उसको मानेंगे, उस इताअत के ताल्लुक की हम तस्वीर बनते हैं, मुजस्सम इताअत बन जाते हैं। यानी खाना पीना ये ऐसी जबिलतें हैं कि जिनके बगैर इंसान की ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, इन पर पाबंदी लगा लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा महीना एक तरह से खुदा की इताअत में गुजरता है। खुदा की इताअत में गुजरने के बाद हमें हुक्म दिया जाता है कि आज से वो इम्तहान ख़त्म हो गया, यानी तुम्हें जिस सारे इम्तहान से गुजारा गया था, जिस मरहले से, वो ख़त्म हो गया। इसलिए इसको ईद उल फितर कहा जाता है। यानी ये इस खुशी में मनाई जाती है कि अल्लाह ने एक महीना मुकर्रर किया, हमने अपनी इताअत का इम्तहान दिया, हम उसमें कामयाबी के साथ पूरे उतरे, अब हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं।
सही। फितर तो का मतलब गामदी साहब?
यानी मैं एक इंसान हूँ, मेरा एक कानून ना, आपने
आपने फितरी से निकला
है? जी, फितरी से। यानी आपके अंदर जो जो आप ईद उल फितर के बारे में पूछ रहे हैं, फितर का मतलब होता है किसी चीज को खोल देना।
ठीक।
यानी आप किसी चीज को खोल देते, रोजा खोलते हैं ना, तो उसे कहते हैं इफ्तार करना।
सही।
ये वही इफ्तार है।
सही।
यानी इफ्तार करने का मतलब क्या है? रोजे को खोल दिया आपने, जो पाबंदी लगाई थी उस पाबंदी को आपने खत्म कर दिया। तो अफ्तरा का लफ्ज अरबी में बोलते हैं, फितर का लफ्ज अरबी में बोलते हैं। तो ये फितर वो है, वो यार रोजे खोल दिए गए। यानी एक तो वो रोज़ा होता है ना, जो दिन का रोज़ा है जो शाम में खुल जाता है, ये पूरे महीने के रोज़े खोल दिए गए। आज के बाद रोज़ों का महीना ख़त्म हो गया, तो उसकी खुशी में और उसके शुक्राने में आप एक दिन मनाते हैं। ये दिन मुकर्रर कर दिया गया, खुदा की इबादत से आप फारिग हुए। अब दिन मुकर्रर किया गया है तो उसमें अल्लाह ताला ने इसी वजह से इब्तिदा कहाँ से की है? दो रकतें पढ़ के आप शुक्राना अदा करते हैं, इसके बाद फिर त्यौहार है, आप जाएं, आप खुशी मनाएं, आप आइज़ा कृपा से।
अच्छा, फितर से फितरा भी याद आया मुझे, लेकिन आपने चूंकि अभी त्यौहार का जिक्र किया कि अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों को ये दो त्यौहार दिए गए, लेकिन इसके अलावा अगर कोई त्यौहार मनाया जाता है, लोग अक्सर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, बाहर सेलिब्रेट करते हैं, तो इसमें कोई कबाहत है? क्योंकि अक्सर लोगों को ये कह के रद्द कर दिया जाता है कि ये गैर इस्लामी है। तो
इसमें गैर इस्लामी का क्या सवाल है? देखिए, दो त्यौहार हैं जो हमारे मजहबी त्यौहार हैं, वो मजहबी तकद्दस के साथ मनाए जाते हैं, अल्लाह के मुकर्रर करना है, वो हमारी अलामत है। इसके अलावा कुछ त्यौहार अगर हम खुद मुकर्रर करते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने कहा यौम पाकिस्तान है, वो भी तो हमारा एक त्यौहार है ना, यौम कायदे आज़म है, वो भी हमारा एक त्यौहार है। इसी तरीके से न्यू ईयर है, बहुत से मुल्कों में मनाया जाता है, ईरान में तो नौरोज़ की तकरीबात कई दिन तक जारी रहती हैं। उसमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो दीन के खिलाफ हो। यानी वहाँ ये नहीं देखा जाता कि कोई नया काम ही नहीं आपने करना, नहीं, कोई चीज़ दीन के खिलाफ नहीं है, कोई चीज़ दीन बनानी नहीं चाहिए। दो चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए, एक अपनी तरफ से हम कोई चीज़ दीन में दाखिल नहीं करेंगे, और दूसरे ये कि दीन के खिलाफ कोई नहीं करेंगे। और दीन के खिलाफ का मतलब क्या होता है? उसके अंदर कोई मॉरल चीज़ ऐसी ना हो कि जिस पर दीन एतराज़ करे, बाकी ठीक है। त्यौहार मनाइए, ये ज़िंदगी है। बसंत का त्यौहार होगा, ये बहार के त्यौहार होंगे, ये ज़िंदगी है।
बड़ी मुश्किल आपने आसान कर दी, बहुत शुक्रिया इसके जवाब का। गांधी साहब, सदका फितर की वजाहत करेंगे, क्या है, किस पर वाजिब है, किसको दिया जाए?
ये दो चीज़ें जो दीन में बड़ी बुनियादी हैसियत रखती हैं
जी,
खुदा की मोहब्बत, इंसानों से हमदर्दी, पूरे दीन का खुलासा यही है। यानी अगर आप मुझसे पूछें कि हमारा पूरा दीन
क्या है,
किस चीज़ पर मबनी है, तो मैं दो बातें कहूँगा, खुदा की मोहब्बत, इंसानों से हमदर्दी। इसी वजह से हमारे यहाँ जो दो बुनियादी इबादत हैं वो देखिए क्या है, एक नमाज, दूसरे ज़कात। एक में हम खुदा के साथ मोहब्बत का इज़हार करते हैं, दूसरे में बंदों के साथ मोहब्बत का इज़हार करते हैं, हमदर्दी का इज़हार करते हैं। तो यहाँ भी वही हुआ, यानी जब हम रमज़ान से निकले तो अब हमने खुदा का शुक्र अदा करना है। खुदा के शुक्र के इजहार के दोनों ही तरीके होने चाहिए। दो रकत नमाज पढ़ेंगे, खुदा के साथ मोहब्बत और शुक्राने का इजहार हो गया, अपनी जेब से कुछ निकाल के गरीबों को देंगे। तो ये दोनों चीज़ें हर जगह होंगी।
रोज़े की रूप ही यही है, आप
रोजे की रूप
कर
यही
है,
इबादत सारी की सारी इसी पर मबनी है। यानी ये हो नहीं सकता कि मैं सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुका दूं और इंसानों की हमदर्दी से सरशार ना हो। इन दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलने का नाम दीन है। यानी मेरे एक पहलू में खुदा की मोहब्बत का ठाठे मारता हुआ एक समंदर होना चाहिए। एक बंदा है मोमिन को खुदा की सच्ची मार्फत हासिल हो, उसके अंदर खुदा की इबादत का जोश हो, वो खुदा की तरफ लपके, दूसरी जानब किसी गरीब की उससे मुश्किल ना देखी जाए, उसके लिए भी वो तड़प उठे, उसके लिए भी उसके अंदर इस्तराब हो। इस्तराब को आप जाहिर बात है कि जाहिर करेंगे ना किसी तरीके से, हमदर्दी के दो कलिमात कहेंगे, किसी के सर पर शफकत का हाथ रखेंगे और जेब की तरफ हाथ नहीं डालेंगे, नहीं, खर्च करेंगे, ताकि खुदा ने अगर आपको दिया है तो कोई दूसरा अगर महरूम है तो उसकी महरूमी का आप इलाज कर सकें तो करें। तो इस वजह से ये दोनों ही बातें हम पर लाजिम की गई हैं कि एक हम दो रकत पढ़ेंगे उस दिन ताकि अल्लाह के सामने शुक्रगुजारी का इजहार करें, और दूसरे क्या करेंगे, दूसरे ये कि अपनी जेब में से कुछ निकालेंगे और किसी गरीब आदमी को देंगे। इसको अरबी जुबान में सदकतुल फितर कहते हैं, हमारी उर्दू जुबान में आकर ये लफ्ज़ फितरा हो गया, फितराना हो गया, और ये भी बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि जुबानें अपना सफर शुरू करती रहती है।
सही। अच्छा, गांधी साहब का निसाब क्या है, किस हिसाब से दिया जाए?
देखिए, रिसालत मआद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए जो उसूल बताया है वो उसूल ये है कि एक दिन का खाना होना चाहिए।
अच्छा,
यानी आप देखिए ना कि हम इस वक्त तीन वक्त खाना खाते हैं, किसी जमाने में दो वक्त खाया जाता था। तो एक मिस्कीन आदमी को आपने कम से कम एक पूरे दिन का खाना देना,
एक शख्स के लिए,
एक शख्स के लिए पूरे दिन का खाना, ताकि वो ईद के पूरे दिन खा पी सके, कम से कम एक दिन वो महरूम ना रहे, ये है। अब जाहिर है उसको मुतय्यन किया गया, आज का ज़माना नहीं था कि अनवाओ अकसाम के खाने पके हुए, खाना अनाज ही होता था। तो उसको रिसालत मआद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुकर्रर कर दिया गया कि भाई आपके यहाँ खजूरें हो सकती हैं, आपके यहाँ जौ हो सकते हैं, तो वो कोई 2.5 किलो के करीब मुकर्रर कर दिया गया कि ये गोया एक दिन का पूरा खाना है। तो इसी का लिहाज करना चाहिए। आपके रोज़मर्रा के खाने की मकदार जो है वो अगर इतनी है कि जिसके लिए 100 रुपये होने चाहिए तो 100 दीजिए, किसी की 1000 है तो 1000 दे दे, अल्लाह की राह में खर्च करें।
कितनी खूबसूरत बात है कि हर शख्स का ख्याल रखा जाए, ईद के रोज़ भी, रमज़ान में भी। आमिर साहब ये भी बताएगा कि इसको अदा करने का भी कोई सही वक्त है? बाज़ अवक़ात लोग कहते हैं कि रमज़ान में दे दें,
पहले दे देना चाहिए। देखिए, बात यह है कि ईद के दिन कोई आदमी क्यों हाथ फैलाया?
अच्छा,
उसके अंदर भी इंसान का ख्याल रखा गया है कि अगर आप ईद से पहले ही खामोशी के साथ जाके किसी गरीब आदमी को दे देंगे तो वो कोई ईद का सामान कर
दुरुस्त है। यानी कि आप रमजान में किसी भी वक्त दे सकते हैं,
दे सकते हैं जब चाहे आप दे दें पहले दिन।
अच्छा, बाज़ औक़ात कहते हैं लोग कि चांद देखने के बाद दिया जाए, तो आप कह रहे हैं
इसमें कोई जरूरी नहीं है, बस आपको आखिरी दिन तक दे देना चाहिए।
सही,
यानी आखिरी वक्त है, जैसे नमाज में होता है ना कि आपने असर की नमाज तो शुरू हो जाती है सूरज के नुचड़ने के बाद, लेकिन उसका वक्त खत्म कब होता है? मगरिब के वक्त खत्म होता है ना, तो इसका वक्त खत्म हो जाता है ईद उल फितर के दिन।
अच्छा,
वरना तो आपको पहले देना चाहिए ताकि आपका कोई भाई है, कोई कपड़े सिलाना चाहता है, किसी बच्चे के लिए कुछ लेना चाहता है, तो ले ले जाके उसका एहतमाम कर ले। अब ये भी क्या बात हुई कि ईद के बाद लोग कतार लगा के खड़े होते हैं नमाज के बाद कि हमें आप फितराना दे दीजिए।
सही। अच्छा, एक और बात पूछना चाहूंगी, सदका फितर के हवाले से हमने बात की, ईद की नमाज की भी हमने बात कर ली, ईद के रोज और एक मुसलमान की क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं, और ये भी बताएगा कि हुजूर पाक इस दिन को किस तरह मनाया करते थे?
देखिए, एक तो है आपकी मजहबी जिम्मेदारी, वो तो दो ही है, आपने फितराना देना है या सदकतुल फितर देना है, कुछ रकम मुकर्रर कर दी गई है, ज्यादा दीजिए, ये तो कम से कम है जो मुकर्रर की गई है, और दो रकत नमाज पढ़नी, ये मजहबी जिम्मेदारी है, इससे आप फारिग हो गए, बाद में आपको आज़ाद छोड़ दिया गया, आप जाएं, आपने कोई तफरी करनी है करें। रिसालत मआद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बयान किया जाता है कि आपके सामने बच्चियां कुछ गा रही थी तो उनको रोका गया, तो आपने फरमाया कि लिकुल्ल कौमिन ईद, हर कौम के लिए एक ईद होती है, वहाज़ा ईद उल, ये हमारी ईद है। تو اس موقع کے اوپر لوگ ملیں، ایک دوسرے کے پاس جائیں، دعوت کریں، اپنے اعزاء اقربا کو ملیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پسندیدہ ہیں، ان میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات وہ ہوتے تھے جو ایک عظیم ہستی کے ہونے چاہیے، نماز کا اہتمام کرتے تھے، اور آپ کی زیادہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپ یتیموں سے ملیں، مسکینوں سے ملیں، ان کے سر پر ہاتھ رکھیں، ان کو اپنی شفقتوں سے بہرہ یاب کریں۔ تو یہ کام ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہمارے لیے حضور کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس میں تکبیریں بلند کی جاتی ہیں، یہ بھی ہماری عبادت کا حصہ ہے، یعنی آپ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ اللہ کو بڑا قرار دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے، تو اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس طرح کے الفاظ اس موقع پر ادا کیے جاتے ہیں۔ تو یہ الفاظ بھی ادا کرنے چاہیے، اس سے ایک فضا بنتی ہے پوری کی پوری، گویا اس وقت پوری کی پوری کائنات اللہ کی بڑائی کا اعلان کر رہی ہے۔ لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے غریب اعزاء کا خیال رکھیے، اپنے گرد و پیش۔
یہی ہم کہیں گے کہ عید پہ آپ نے نماز پڑھی، صدقہ فطر ادا کیا، آپ نے اچھے کپڑے پہننا اور کھانے پکانا، یہ تو سب ہمارے تہوار میں شامل ہے۔ مگر جب ہم مزید بات کریں کہ اسلام اور کیا ہماری ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں، بیماروں سے، بزرگوں سے۔
سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ آپ اپنے ماحول میں پاکیزگی پیدا کریں، اور وہ نہیں پیدا ہو سکتی جب تک ہم مال خرچ نہیں کریں گے۔ یعنی اگر غریبوں کو ہم نے اپنی توجہ کا مستحق نہیں سمجھا، ہم نے بڑوں کو عزت نہیں دی، ہم نے اپنے معاشرے میں مراتب کا لحاظ نہیں رکھا، تو ہم نے اپنے تمدن اور معیشت کو تباہ کر لیا۔ یعنی یہ صرف اس سے نہیں ہوتا کہ ہماری جیب میں کتنے پیسے ہیں، اصل چیز یہ ہے، وہ حضرت مسیح نے ایک بڑی عمدہ بات کہی ہے کہ جہاں تمہارا پیسہ ہوتا ہے وہیں تمہارا دل بھی ہوتا ہے، تو اپنا پیسہ خدا کے پاس رکھ دیجیے تاکہ آپ کا دل بھی خدا کے پاس رہے۔
بڑی خوبصورت بات کی غامدی صاحب، یہ بھی ذرا وضاحت کیجیے گا کہ عید کا دن ہماری ساری اٹینشن جو ہے رمضان کے روزے اور عید کی تیاری میں گزرتے ہیں، ہم بڑا جشن کے طور پر اس دن کو منایا جاتا ہے، بھرپور طریقے سے مناتے ہیں اس دن، اپنا سب کچھ کر گزرتے ہیں لوگ، تو کوئی حدود بھی ہے اس دن، اسلام ہمارے لیے کوئی حدود بھی بناتا ہے؟
ایک ہی چیز ہے، وہ یہ کہ کوئی اخلاقی لحاظ سے برا کام نہ کیجیے۔
پھر وہی،
اگر آپ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کو آزار دیتے ہیں، آپ حدود سے متجاوز ہو جاتے ہیں، کوئی فحش حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ سوسائٹی کے نظم کو خراب کرتے ہیں، آپ لوگوں کی نیند خراب کرتے ہیں، آپ طالب علموں کے لیے مصیبت پیدا کر دیتے ہیں، آپ لاؤڈ اسپیکر کے اوپر گانا بجانا شروع کر دیتے ہیں جس میں کسی کے لیے کام کرنا ہی ممکن نہ رہے، تو یہ ساری چیزیں اخلاقی لحاظ سے قابل اعتراض ہیں۔ اصل میں دیکھیے، اخلاقی لحاظ سے کوئی چیز قابل اعتراض ہے، اس کے لیے کسی عالم کے پاس جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کا دل فتویٰ دے رہا ہوتا ہے، اس میں سب سے بڑا مفتی آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ بتا رہا ہے آپ کو۔ بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم برائی نہیں سمجھتے لیکن وہ برائی ہوتی ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، میں ایک بستی میں گیا، وہاں مجھے کسی کے ساتھ کوئی بات کرنی تھی، سامنے بالکل مسجد تھی گھر کے، اس میں لاؤڈ اسپیکر پر ایک صاحب اعلانات کر رہے تھے، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی، لیکن ان کو یہ احساس نہیں، ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ اس دوسروں کو کیا تکلیف پہنچ رہی ہے۔ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا، آزار میں مبتلا کرنا، کسی غریب کو تکلیف پہنچانا، کسی بیمار کو تکلیف پہنچانا، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ آپ کا شوق پورا ہو گیا، تو عید کے موقع پر کیونکہ جشن کا سما ہوتا ہے، اب اس موقع پر آپ نکل کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں کے لیے جینا حرام کر دیا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ اچھے طریقے سے خوشی منائیں، اخلاقی حدود کے اندر رہ کے خوشی منائیں، یہ خوشی کا دن ہے، خوشی منانے سے نہیں روکا جا رہا، ہمارے دین میں کسی کو تفریح سے نہیں روکا گیا، لیکن اخلاقی حدود کے اندر۔
اچھا غام صاحب، عید کا وقت ہے اور ہم بات بھی عید کی کر رہے ہیں، تو آپ بھی اپنے بچپن کا کوئی انٹرسٹنگ واقعہ ہمیں سنائیے عید کا۔
یہ ہمارا بچپن تو دیہات میں گزرا، اور دیہات کی عید اور شہروں کی عید میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ دیہات میں آپ کو بڑا فطری ماحول میسر ہوتا ہے، عام طور پر عید گاہیں قریب نہیں ہوتی، لوگ بہت پہلے سے تیاری کر کے سفر کر کے بعض اوقات جاتے ہیں۔ میری ننیہال میں بھی عید گاہ بہت دور ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ والدہ ننیہال میں گئی ہوتی تھی تو ہم وہاں عید کرتے تھے۔
کون سی جگہ ہے
یہ؟ ناروال میں، ناروال کے قریب ہے ہمارا، جو میرا اپنا ددھیال کا گاؤں ہے وہ داؤد ہے، وہ بھی ناروال کے کوئی 10-12 کلومیٹر ادھر ہے، اور یہ بھی دوسری جانب ہے۔ تو عام طور پر لوگ اس میں پھر صبح صبح نکل کھڑے ہوتے تھے، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی عید کی تیاری شروع ہو جاتی تھی، اور نکل کھڑے ہوتے تھے اور وہاں جا کر پھر عید گاہ میں جمع ہوتے تھے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو مسجدوں میں ہم عید پڑھ لیتے ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت عید وہ ہوتی ہے جو آپ کھیتوں میں جا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے گرد و پیش میں بھی قدرت کا ایک ماحول ہوتا ہے، اور اس فطری ماحول میں آپ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر عید گاہیں ایسے طریقے سے بنائی جاتی تھیں، ان میں عام نمازیں نہیں ہوتی، بلکہ باہر ایک جگہ بنا دی ہے، اس میں ایک نشان سا مقرر کر دیا ہے، وہاں خطبہ ہوگا، وہاں لوگ جمع ہوں گے، اور چار دیواری ہوتی ہے، اس کو عید گاہ کہا جاتا تھا۔ اب تو یہ رواج ختم ہو گیا، لیکن ہمارے بچپن میں بہرحال یہ موجود تھا۔ اور بچپن میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی دلچسپی بچوں کو یہی ہوتی ہے कि उन्हें कुछ कपड़े पहनने के लिए मिल जाए, कुछ खिलौने मिल जाएँ जिनसे वो खेल सकें, उनके पास कुछ पैसे हों जिसको दूसरों को दे सकें। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी मेरे पास इतने पैसे हों कि जब मैं ईद से निकलूँ तो वहाँ अगर लोग खड़े हुए हों तो कोई आदमी ऐसा ना हो कि जो महरूम रह जाए। तो मैं समझता हूँ कि सब बच्चों की ये ख्वाहिश होती है।
तो आपको ईदी मिलती थी आने के?
ईदी तो एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझता हूँ बच्चों का बैरल भी हक है, उनको लेना ही होती है।
और ईदी देते भी आप?
ये अब तो बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, जाहिर
अच्छा,
देना ही होता है।
अच्छा आपने बताया, मैं मेरी टीम भी यहीं पर मौजूद है।
बल्कि आप तो तरसते हैं कि कोई हमें भी दे, आप तो देना ही होता है।
बहुत बहुत शुक्रिया गामदी साहब, बड़ी हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। यकीनन आपके इल्म में भी शब कदर के हवाले से ईद किस तरह मनानी चाहिए। देखिए दीन में कोई आपको रुकावट नहीं है कि आप इस त्यौहार को नहीं मनाएं, इसको बड़े पुरौनक तरीके से अपने भरपूर जज्बे के साथ मनाएं, लेकिन किसी को आजार ना दें, किसी के आजार का सबब ना बने, सिर्फ अखलाकी तौर पर कोई ऐसा काम ना हो जो कि किसी के लिए तकलीफ का बायस बने। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप यकीनन ये रोज भी अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं, यकीनन ईद भी भरपूर तरीके से मनाएंगे। हमारी जानिब से पेशगी मुबारक, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और इशू के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।